कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हम लोगों का प्रसंग चल रहा था गोपीनाथ जी के प्राकट्य इत्यादि का, और गोपीनाथ जी को हम कैसे समझेंगे उनके पहले चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र कुछ समझने से तब ये समझ में आए, नहीं तो गोपीनाथ को समझा नहीं जा सकता। गोपीनाथ जी को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु जिस पद्धति को लेकर के आए थे और प्रचार किया उस पद्धति को अवलंबन करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी माता के गर्भ में आए तो ग्रहण लगा हुआ था, चंद्र ग्रहण शाम का, और करोड़ों लोग गंगा जी में स्नान करते हुए हरि बोल हरि बोल कर रहे थे। आने आस ही सब लोग मंत्र कर रहे थे, महामंत्र, और गंगा में डुबकी लगा रहे थे। जन्म के प्रारंभ से ही, और जब उत्पन्न हुआ तो इतना सुंदर था जिसका कोई ठिकाना नहीं, और रोता रहता, और यदि कोई हरी बोल कर देता और ताली बजाता हरी बोल बस किलकारी भरने लगता। जगत को जन्म से ही शिक्षा दी, यदि भगवान को पाना है, यदि जन्म में सुखी रहना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में और किसी भी चीज़ से, उपास्य से, दान से, पुण्य से, पूजा से, पाठ से नहीं होगा। यहाँ तक कि ठाकुर जी का अर्चन भी करते हो, पूजन भी करते हो और नाम कीर्तन नहीं चल रहा तो अकेला अर्चन पूरा काम नहीं देगा। कलयुग में विशेष करके हमारे महाप्रभु जी कहते हैं, जीव गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि कलौ अन्या कर्तव्या हरिनाम संकर्तने एव, भगवान के नाम के कीर्तन के साथ में यदि सब कोई कुछ करते हो तो कुछ फल देगा, नहीं तो फल नहीं देगा। इसलिए महामंत्र का कीर्तन अत्यंत आवश्यक है। चाहे पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, तप कीजिए, किंतु उसमें कलयुग में यह नाम करना पड़ेगा। कौन सा नाम करना पड़ेगा? जो मन में आ गया वही कर देंगे, राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, फल तो देगा। किंतु हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस नाम में सबसे अधिक शक्ति देखी कलयुग के लिए, उन्होंने उपनिषदों में, वेदों में इस चीज को वर्णन कर दिया करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले ही। कलिशंतरण उपनिषद में, वेद में लिखा गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यद्यपि ये सब युगों के लिए, किंतु कलयुग के लिए ये विशेष है। इसमें एक ही साथ में भगवान के 16 नाम आते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कोई यदि इसको ऐसे ना कह करके ऐसे कहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसमें हानि क्या है? कोई हानि नहीं। वो लोग कहते हैं बहुत हानि है। क्या हानि है? अरे पेड़ा जरा टेढ़ा हो, लड्डू जरा टेढ़ा हो और गोल हो या चपटा हो, उसमें क्या आता जाता है? चाहे इधर से खाओ चाहे उधर से खाओ, उसमें क्या आता जाता है? कोई मिठाई है उसको आगे से खींचे खाओ, चपटा बना लो, किसी का शक्ल बना लो, उसे क्या हर्ज होता है? नहीं, हमारे ऋषियों ने आविष्कार किया है, कहा कि देखो समझ बुझ करके करो इसको, जैसा हमने कहा है ये भगवान की मुख की वाणी है, वेद भगवान के आश्वास है, वाणी है, इसलिए उसको अन्यथा मत करो, जैसा है वैसा ही करो। यदि उल्टा पुल्टा कर देगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। उन्होंने लिखा ब्रह्मांड पुराण में, पद्म पुराण में और दूसरे पुराणों में लिखा, उसमें कलिसंतरण उपनिषद में लिखा क्या, ये देखो इसका क्रम ऐसे करना, पहले होगा हरे, इसके बाद में होगा कृष्ण, इसको दो बार बोलो हरे कृष्ण, और इसके बाद में हरे और फिर राम और उसके बाद में हरे राम और तब फिर हरे हरे, हरे कृष्ण, इसके बाद में हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, और इसके बाद में ऐसे ही हरे राम 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 हरे। ये ऐसा उन्होंने बतलाया, ऐसी पद्धति है, ये कोई नई बात नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु आए उसको चलाया, नहीं, सब युगों के लिए अपने अपने मंत्र हैं, कलयुग का भी मंत्र वेदों में ही बतलाया गया, इसलिए इस नाम को ऐसे ही करें। विशेष करके यह नाम, यद्यपि इसमें तीन नाम दिखते हैं, हरि कृष्ण और राम, किंतु इसका भी एक तात्पर्य है, जो लोग सांप्रदायिक मंत्र में दीक्षित नहीं हैं वो लोग तो हरे कृष्ण हरे राम जैसा हो वो कहेंगे, और जिस हरि कृष्ण राम तीन ही लो ले लेंगे, किंतु जो लोग गौड़िया वर्ष में उसके सांप्रदायिक रीति में ब्रज प्रेम लाभ करने के लिए जो चाहते हैं और उस परंपरा में आए हैं, वो लोगों के उपास्य दो नहीं होते, तीन नहीं होते। ये हरि कौन हैं जो सबका विपत्तियों को हरण करते हैं, चित्त को हरण करते हैं, इसलिए ये कृष्ण ही हरि हैं, हरि अलग नहीं हैं। और राम कौन हैं? राधा रमयति इति रामा, राधा रमण, राम का ही नाम यहाँ पर राम है। विशेष करके हम लोग अकेले कृष्ण को नहीं मानते, शास्त्रों में ऐसा नहीं माना गया, राधा जी के साथ में यदि कृष्ण नहीं होंगे तो उस मंत्र का नाम का कोई भी मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पर बतलाया गया है हरे कृष्ण के भी चित्त को अपनी प्रेममयी सेवा से हरण करने वाली राधिका जी का नाम हरे हरा है, और हरा से हुआ है हरे, हे हरे हे राधिके, इसलिए यहाँ पर राधा कृष्ण का नाम है, और दूसरे में भी हरे राम में भी हरे राधिका जी और राम राधा रमण कृष्ण, इसलिए जुगल उपासना का मंत्र है, उसी जगह में लिखा गया है। इस मंत्र का फल क्या होगा? ब्रज में राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा, यदि सद्गुरु से इसको ग्रहण करके नियमित रूप में इसका तात्पर्य समझ करके और इस प्रकार से यदि नाम कोई करे तो कलयुग में जल्दी ही बहुत शीघ्र ही उसका कल्याण हो जाएगा। उसको कुछ नहीं करना है, सारे उसको कंसेशन अपने आप नाम करने से ही हो जाएगा, उसी में नौधा भक्ति इत्यादि सभी कुछ उसी नाम के अंदर में आ जाएगी। यदि और कुछ न करे बस इस मंत्र का करे तब तो हो जाएगा, किंतु शब्द ब्रह्म होना चाहिए। शब्द ब्रह्म माने क्या? गुरु जो मन में धारण करता है और सब समय सर्वदा नाम करता है, नाम में उसकी सिद्धि हो गई है, वो यदि नाम देगा तो शब्द ब्रह्म होगा, और नहीं तो अपने आप करने से पुस्तकों में देखा हुआ लिख कर इससे नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु का पदाश्रय करके इस नाम को करने से सहज ही गति होती है। एक शब्दों में सारे वेद उपनिषद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत गीता का सब यही है, हरि नाम सबका सार है। इसलिए आपको लोग कुछ करें न करें, घर में भी बैठे रहें, एक आदमी मर रहा है क्या करेगा? हरि नाम कर सकता है। अभी आज जा रहा था तो सुनाई पड़ा राम नाम सत्य है, देखो उस समय में भी राम नाम सत्य है। एकमात्र नाम में ही गति है और नाम ही सत्य है। इस चीज़ को ठीक समझ करके भगवान का नाम जरूर करो, इसके बाद में जो कुछ करना है करो। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसलिए जन्म होते ही ये शिक्षा दी, कम से कम तो आरंभ भी करो, 1,00,000 नाम जपने की चेष्टा करो। 2-4 नाम होने से नहीं होगा, होगा कुछ न कुछ लाभ, सांसारिक लाभ हो जाएंगे। और 1,00,000 नाम जपना, 1,00,000 से प्रभु उसके हाथ का दिया हुआ कोई चीज लेते नहीं तो नहीं लेते, यह भी समझ रखो। 1,00,000 से एक नाम भी यदि निकल गया वैसा तो सारे पाप, यहाँ तक कि प्रारब्ध कर्म भी सब दूर हो जाएंगे, विश्वास रखो। अजामिल ने इतने पाप किए, कोई पाप भोगना पड़ा? अर्जुन और भीम ने लाखों लोगों को मारा युद्ध में, कोई भोगना पड़ा? नहीं। इसलिए सारे पाप भी दूर हो जाएंगे, यदि कुछ किया भी है तो नाम के प्रभाव से सब कुछ दूर हो जाएगा। समस्त नामों में यही नाम सबसे श्रेष्ठ है करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों के बाद में जब बड़े हुए, बहुत सी लीलाएँ की, किंतु सब भगवत संबंधी लीलाएँ की। कुछ दिनों के बाद में जब बड़े हुए और तो अपनी संस्कृत की पाठशाला खोल ली, उसमें व्याकरण पढ़ाने लगे। कुछ दिनों के बाद में एक केशव काश्मीरी नाम का बड़ा प्रसिद्ध दिग्विजयी पंडित आया, विश्व के सारे विद्वानों को काशी वाराणसी दक्षिण में मदुरा और कहाँ कहाँ सब जगह घूम करके समस्त विद्वानों को परास्त करके नवद्वीप में आया। उस समय नवद्वीप में केवल संस्कृत के पंडित ही कम से कम जो पढ़ाते थे वो लाखों थे, तो छात्रों की बात ही क्या, इतना बड़ा भारी विद्या का, संस्कृत विद्या का केंद्र था वो। वहाँ आया, यदि वहाँ पर विजय कर लेंगे सब जगह विजय कर लेंगे। वहाँ के पंडित डर गए उससे, वो सरस्वती का वरद पुत्र था, सबको हरा देता था। जब आया नवद्वीप में, ढिढोरा पिटवाया कि कोई भी हमसे शास्त्रार्थ कर ले, कोई भी सामने नहीं आया। हजारों ऊँटों पर, उसकी गाड़ियों पर, ऊँट की गाड़ियों पर, ऊँटों पर, बैलों पर उसकी पुस्तकें लद करके आई जिसमें वो प्रमाण देता था, और उसको समस्त कुछ कंठस्थ था। पंडितों ने कहा यदि ये छोटा निमाई अभी 16 वर्ष का है, व्याकरण पढ़ाता है, कुछ नहीं जानता, वो हम लोगों का शिष्य है, उसको हरा देगा तो हमारे पास में आ जाए, और यदि वो हार जाएगा तो हम लोग हार जाएंगे, और जीत जाएगा तो हम लोग जीत जाएंगे। वो देखा जी छोटा सा बालक ही, एक ऐसा तेजस्वी, कहाँ रहता है? गंगा के घाट पर शाम को जाता है अपने छात्रों के साथ में। उसकी उम्र कम है और उसके छात्रों की उम्र बड़ी बड़ी है, इतना वो विद्वान लड़का है, प्रतिभाशाली। शाम को अपने शिष्यों के साथ में लंबी चौड़ी पगड़ी बांधकर और वहाँ पर पहुँचा। ये छोटे से निमाई पंडित, बड़ी प्रतिभाशाली, अपने छात्रों के बीच में सैकड़ों और बीच में बैठा हुआ, उनसे कुछ संस्कृत में ही वार्तालाप कर रहा है। उनसे कुछ पूछ रहा है, कुछ बतला रहा है। इतने में केशव काश्मीरी अपने शिष्यों के साथ में हजारों आया, वहीं पर बैठ गया और उनकी प्रश्नोत्तरी सब सुनने लगा। ये लड़के तो बड़ी प्रतिभाशाली, और बीच में जो बैठा है ये तो बड़ा तेजस्वी मालूम पड़ता है। किसी से पूछा जो वो बीच वाला लड़का कौन है, अरे यही तो निमाई पंडित है, यही निमाई पंडित है। उसको डर लग गया जैसे तो बड़ा तेजस्वी लड़का है। जब इनका व्याकरण का कुछ पूछना चूछना ये हो गया तो बच्चे लोग उचक उचक करके देखे ये केशव काश्मीरी आया है और सारे भारतवर्ष का दिग्विजय करके नवद्वीप में आया है। तो महाप्रभु जी ने, निमाई पंडित जी ने कहा, किसी का अभिमान नहीं रहता, जो अभिमानी होता है उसका दंभ अभिमान जरूर चुकना चूर हो जाता है, देख लेना, हो जाएगा चकनाचूर कहीं ना कहीं। इतने में वो पंडित बच्चों के पास में आया और बोला इन लोगों से, महाप्रभु जी उसको देख करके बोले, सुनते हैं कि आप केशव काश्मीरी बड़े विद्वान आदमी हैं, गंगा जी के संबंध में कुछ आप नए नए महिमा के श्लोक कुछ बोलिए तो देखें। सुन करके बोला जी, अच्छी बात है, धड़ाधड़ सैकड़े श्लोक नए नए अलंकार अनुप्रास इत्यादि के साथ में, सकी तकी पौकी ये तकारे और पकारे, एक बार त त त त करके शब्द निकले, कहीं प प करके शब्द निकले, कहीं कुछ कहीं कुछ। सुन करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसके तरफ में देखने लगे, और वो भी बड़े शान से देखने लगा जी, देखो अब हमारी धाक जमी है। तो इन्होंने कहा, निमाई पंडित ने, पंडित जी आप तो बहुत सुंदर आपने श्लोक बोले नए नए, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी श्लोक आप ले करके उसकी थोड़ी सा अर्थ तो बतलाइए, ये इसमें कौन सा गुण है कौन सा दोष है। केशव काश्मीरी के पद्य में कोई भी दोष नहीं होता है, सभी अलंकार अनुप्रास और सभी गुण ही होते हैं, तो आप बुरा न मानिए तो मैं इसके पांच गुण पांच वो दोष दिखला दूँ। तो उसने कहा, इसको तो याद होगा नहीं, मैं तो आंधी की तरफ में इतने श्लोक बोल गया तो ये बीच से याद कैसे रखेगा। कहें अच्छा कौन सा श्लोक बोलो, ठीक बीच से एक श्लोक इन्होंने झट जैसा कहा था और भी सुरेले तान से स्पष्ट रूप में उसको बोला, जैसे इसका अर्थ कीजिए, ये तुमने कैसे याद कर लिया। तो ये कहते हैं, यदि सरस्वती का कोई वरद पुत्र हो सकता है तो भगवान की कृपा से कोई श्रुतिधर भी तो हो सकता है। अब तो कुछ डर गया भीतर ही भीतर। महाप्रभु जी ने कहा जी अच्छा मैं इसका दोष गुण मैं बतलाता हूँ सुनिए। इन्होंने उसके पहले तो पांच गुण बोले और पांच गुण बनने के बाद में एक शब्द को लिया, भवानी भरता। कहा जी आपने ये क्या कर दिया, चौपट कर दिया सब अर्थों को। भवानी किसको कहते हैं, भव माने शंकर और उनकी पत्नी भवानी, भव से भवानी हुई, और आपने लिख दिया भवानी भरता, तो भवानी का भी और कोई भरता हो गया। आ रहे समझ में, भव की पत्नी और उनका फिर पति, ये कैसे हो गया। भव माने शंकर जी, उनकी पत्नी हुई पार्वती जी भवानी, और भवानी का भरता, अब शंकर जी के अतिरिक्त उनका कोई भरता होगा। अब तो उसकी अक्ल एकदम गड़बड़ हो गई, कुछ उत्तर नहीं दे सका। इस तरह से उसको पांच गुण और पांच दोष बतलाए, कुछ खंडन नहीं कर सका, मत नस्तक कर दिया और बच्चे लोग ताली बजा करके हंसने लगे। इन्होंने बच्चों को बहा, देखो सम्मानित व्यक्ति को हंसना नहीं चाहिए, और उनको कहा अब कल आएंगे फिर हम लोग बात करेंगे, आप जाइए, पंडित व्यक्ति हैं, सोचिए सोच समझ करके फिर आएंगे। वो तो चला गया, रात में अपनी सरस्वती देवी को चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ करके समाधि लगा लिया और बोला जी देवी आपने हमारे ऊपर में इतनी कृपा की और हराया तो एक तुच्छ लड़के से जो कुछ नहीं जानता, व्याकरण भी नहीं जानता, और उसे हरवा दिया। बड़ी लज्जा की बात, मैं आप प्राण छोड़ दूंगा, आपकी आराधना भी नहीं करूंगा। तो वो बोली, उसको दर्शन दिया और बोली, अरे तुम इसको साधारण बालक मत समझो, ये हमारे पति हैं, असल हमारे पति यही हैं, ये कृष्ण स्वयं हैं, तुम नहीं समझता। अब जल्दी से विद्या का अभिमान छोड़ करके इनके चरणों में गिरो और जाकर के क्षमा मांगो। सवेरे होते ही वहाँ पर पहुँचा उनके दरवाजे पर और क्षमा मांगने लगा। हमको क्षमा कर दिए, मैं समझता नहीं था, ये तो हमारी देवी ने बतलाया कि आप स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने कहा जी देखो, विद्या का फल शास्त्रार्थ और तर्क नहीं है। विद्या का फल क्या है? भगवान के चरणों में रति रहे। विद धातु विद्या, भगवान को जिसने नहीं जाना वो विद्या विद्या नहीं है। जो लोग कृष्ण को भगवान नहीं जान करके सारे देवताओं को ही कृष्ण के समान समझते हैं वो अपराधी जीव हैं। गणेश शंकर दुर्गा काली इत्यादि भगवान की शक्तियां हैं, भगवान ने उनको शक्ति दी है, उनकी विभूतियां हैं, इसलिए कुछ कुछ देती हैं, किंतु कृष्ण के आसन पर बराबर बैठ जाएंगी ये अपराध आप लोग मत करेंगे। उनको सम्मान दीजिए गुरु के रूप में, उनको देवता देवी के रूप में, भगवान की विभूति के रूप में। एक चींटी को भी सम्मान देंगे, किंतु एक वेश्या को अपनी मैया के बराबर बनाकर एक आसन पर मत बैठाओ। ये सब चीज़ों का अच्छी तरह, गोपीनाथ जी और सब देवता लोग एक नहीं हैं, गणेश जी एक नहीं हैं। आज संसार में यही हो रही है और आप लोग भी अधिकांश लोग ऐसे ही करते होंगे, ऐसा मत करो। उनका जथा स्थान दो, बेटा बेटा है, पुत्र पुत्र है, पति पति है, ओ पितामह जी पितामह हैं, ये सबों का साथ में संबंध जैसा है वैसा रहना चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र जगत के पति हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, भागवत ने घोषणा की है, गीता में घोषणा की है। इस सब चीजों को ठीक रख करके एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का, ये राधा गोपीनाथ जी का, गोविंद जी का आश्रय लीजिए, तब तो आपका कल्याण होगा। यही महाप्रभु जी जब और बड़े हुए और थोड़े से बड़े हुए, गया में गए अपने मैया बाप का पिंड देने, पिता का पिंड देने, जैसा लोग संसार वाले करते हैं। गया में गए, स्नान किया, इतने में वो गया के में गदाधर जी का पाद पद्म की पूजा कर रहे थे, इतने में एक बहुत बड़े संत से भेंट हो गई। उनका नाम था ईश्वरपुरी, बहुत उच्च कोटि के, प्रेम में गदगद होकर के सब समय रोया करते। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जातानुरागो चित्त उच्चई हसत तथो रोदति। कभी हंसते, कभी रोते, कभी जमीन में गिर करके लौटते पलौटते, कभी हंसने लगते भगवान के लीलाओं को देख करके, नाम करते हुए। ये वहाँ पर मिल गए, इनको देखते ही इनको प्रणाम किया, स्वयं भगवान होने पर भी बोले कि देखो ये आपके समान इस समय में कोई भी भक्त नहीं है, मैं आपको गुरु के रूप में वर्णन करता हूँ, मैं अपने आपको, अपने शरीर को, आत्मा को, अपनी सब चीज़ों को आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ, आप जैसा हो ऐसे हमारे कल्याण कीजिए। मैं जानता हूँ एक पिंड व्यक्ति देता है तो उसी व्यक्ति का उद्धार होता है जिसको पिंड दिया गया, और उद्धार क्या हुआ, कुछ समय के लिए कुछ कल्याण हुआ, फिर जन्म लेना पड़ेगा। और जो संतों की सेवा करता है, वैष्णवों का संग हो जाता है, उसका कोटि कोटि पितृ लोग ऐसे ही उद्धार उनका हो जाता है। इस चीज को याद रखना चाहिए, संतों की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी है, किंतु संत भी वैसा ही होना चाहिए जो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं है, गोपीनाथ के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं, ऐसा संत होना चाहिए, तब तो वैसे ही संत होने चाहिए। तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया और बोले अब जैसा कहेंगे वैसे ही चलूंगा, यह शरीर मेरा नहीं है, अभी संसार से हमारी नौका पार करके राधा गोविंद जी के चरणों में हमको समर्पण कीजिए। ये ठीक है, उनको हरि नाम दिया और शुद्ध रूप में दीक्षा दी, और दीक्षा दे करके उनको मंत्र दिया, कुछ मंत्र जपने लगे। अद्भुत उसका फल, क्या फल, कुछ दिनों के बाद में यही महाप्रभु जी काशी में पहुंचे। वहां पर एक कितने हजारों 88,000 60,000 अद्वैतवादियों का गुरु प्रकाशानंद उनको वेदांत पढ़ाता था। क्या भगवान का रूप नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है, हम सभी ब्रह्म हैं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, आप भी ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं, बेटा भी है, बाप भी ब्रह्म है, चींटी भी ब्रह्म है, अलग से कोई ब्रह्म नहीं, और जब हम गत हो जाएंगे तो हम ब्रह्म मिल करके एक हो जाएंगे। ये सब विचार बहुत गलत हैं, ऐसे लोग नाम करने पर भी उनका कल्याण नहीं होगा। अरे परब्रह्म तो एक है, ये गोपीनाथ जी हैं, दूसरे कोई परब्रह्म नहीं है, इसलिए सभी ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म है तो बिलबिलाकर है, ब्रह्म बूढ़ा होता है, दांत टूटता है, उसको टीबी कैंसर होती है, आजकल जितने बड़े बड़े ये सब अद्वैतवादी हैं उनको यही हो रहा है। क्यों हो रहा, बिलबिलाते हैं, मरते हैं, ब्रह्म तो मरता नहीं है, इसलिए यह बात ठीक नहीं। हम सभी ब्रह्म के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, ब्रह्म नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए था। तो वो अद्वैतवादी प्रकाशानंद सरस्वती वहाँ पर बड़ी सभा कर रहा था, उसमें ये पहुँचे, इनको निमंत्रण किया गया वहाँ पर जाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। तो ये भी कुछ लीलावशतः गए, लोगों के कहने से गए। जब गए तो वहाँ पर बड़ा पंडाल लगा हुआ था, और ऊँचे पंडाल पर उनके सब ऋषि, ये अद्वैतवादी बड़े बड़े सन्यासी सब 60,000 सन्यासी बैठे थे, और उसके बीच में वो बैठा था। जब निमाई पंडित जी वहाँ पर गए, दीनहीन हो करके जहाँ पर पैर धोते हैं उस पैर धोने के स्थान पर बैठ गए वहीं, और एकदम ऐसे बैठ गए। अब तो सन्यासियों का जब गुरु था, वो झट वहाँ से उतर करके आया और उनका हाथ पकड़ के बोला, जी तुम तो अद्वैतवादी सन्यासी हो, हमारे ही संप्रदाय के हो, तो नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो। नहीं नहीं, आप लोग महान व्यक्ति हैं, अद्वैतवादी हैं, ऊपर बैठिए, हम तो नीचे बैठने योग्य हैं, हम तो योग्य व्यक्ति नहीं हैं, हम तो मूर्ख हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहो, तुम्हारे अंदर में सभी बातें ठीक है, किंतु तुम में एक बात है, तुम्हारा गुरु भी वो कौन, केशव भारती जो तुमको संन्यास दिया था, वो भी भारतीय संप्रदाय का अद्वैतवादी है, किंतु तुम एक बात क्यों ऐसा क्यों करते, तुम ये नाचते गाते हो, रोते हो और नृत्य करते हो, ये ऐसा क्यों करते हो। सन्यासियों के लिए नृत्य करना और संगीत वाद्य बजाना और नाचना गाना ये उचित नहीं, वेदांत पढ़ो, और यदि होगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे वेदांत में। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके, वो तो बहुत उम्र के व्यक्ति और जिनके 60,000 सन्यासी शिष्य हैं, वो कैसा होगा, और ये तो अभी बालक अभी निमाई हैं, छोटे से अभी उम्र की, हाथ जोड़ करके बोले, देखिए वेदांत में हमारा अधिकार नहीं है। क्यों, हमारे गुरुजी ने जब हमको मंत्र दिया तो उन्होंने कहा एक श्लोक याद कर लो, क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम वकील, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यत, कोटि बार वेदांत का अध्ययन करने से भी उसे कल्याण नहीं होगा। और इसके बाद में हमको मूर्ख दे करके कहा जी यही मंत्र जपो, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम, और इसके साथ में हमको एक और मंत्र दिया, क्या, गोपाल मंत्र। मैं उस मंत्र को करने लगा, मंत्र की ऐसी अद्भुत शक्ति हमने देखा, क्या कुछ दोनों के बाद ही में गोपाल मंत्र जपने के साथ साथ में एक छोटा सा गोपाल, कौन, जसोदा का कन्हैया लाल, बहुत ही अलबेला सुंदर, श्याम सुंदर, मुरली बजाता हुआ मोर पंख धारण किए हुए, ऐसा सुंदर जी हमने जीवन में देखा नहीं, हमने देखा उसको। मैं तो एकदम पागल हो गया, मैं उठ करके खड़ा हुआ, उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, वो पीछे हटता गया। हटते हटते जब एकदम निकट में मैं पहुंचा, तो झट न जाने कहाँ एक पेड़ के नीचे अंतर्ध्यान हो गया। अब तो मैं रोने लगा, कभी हंसता, कभी चिल्लाता, कभी कुछ करता। मैं गुरुजी के पास नहीं गया, गुरुजी आपने कैसा मंत्र दिया, इसका क्या न जाने क्या हमको भूत पकड़ लिया, ना जाने क्या हो गया, इस मंत्र की कैसी शक्ति है जो मैं पागल होकर के नाचता हूँ, कभी कभी गाता हूँ, कभी जमीन में लोट पोट करता हूँ, मुझको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। गुरुजी ने मुझे आलिंगन कर लिया, बोले जे हमारा जन्म भी सार्थक कर दिया तूने, तुम्हारा तो जन्म सार्थक, हरि नाम का करने का फल, मंत्र करने का तो यही फल है, कृष्ण का दर्शन हो जाए, वो पागल हो जाए संसार की दृष्टि से, उन्मत्त हो जाए कृष्ण के नाम में, यही तो हरि नाम का फल है, मंत्र का फल है। जिसने अनुभव नहीं किया हरि नाम करते समय, जिसको आनंद नहीं आता, जिसको कोई टेस्ट नहीं आता, नाम जल्दी से रख दें, नींद आती है, उसका जीवन बेकार का है। और जिन लोग हरि नाम करते हुए इस प्रकार से करते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान के एक एक अक्षर में ह रे कृष्ण, ये 32 अक्षर में भगवान के 32 रूप से, किसी में राधा गोविंद, किसी में राधा गोविंद, किसी में राधा मदन मोहन, किसी में राधा कांत, किसी में कुछ, ऐसा वो दर्शन करते हैं और प्रेम में विवल हो जाते हैं, दूसरों को भी विफल बना देते हैं, ये नाम का फल है। इस प्रकार से सारे भारतवर्ष में, अब तो सारे विश्व में महाप्रभु की कृपा से ही चारों तरफ में ये प्रचार चल रहा है। और थोड़ी सी देख रहे, जब वहां से लौटे गया से कुछ दिनों के बाद में, उन्होंने व्याकरण पढ़ाना बंद कर दिया, प्रत्येक अक्षर का, धातु का, शब्द का, प्रत्यय का अर्थ क्या करें वो कृष्ण ही देखें सब में, इसलिए पढ़ाएं क्या, अंत में पढ़ाना बंद कर दिया। उनके बच्चे भी उनके साथ हो लिए, धीरे धीरे वैराग्य होने लगा, घर में नहीं रह सके। किसी किसी को बतला दिया, मैं कल अब जाने वाला हूँ, नित्यानंद प्रभु जी और उनके साथियों को, चंद्रशेखर आचार्य और किसी किसी को बतला दिया, और किसी को नहीं बतलाया गया। रात हुई, रात होने के पहले आज सवेरे ही चैतन्य महाप्रभु जी, निमाई पंडित जी गांव में गए, प्रत्येक लोगों से मिले, सबको अखबार भर करके मिले, और किसी ने दूध दिया, किसी ने लौकी दिया, किसी ने कुछ दिया, सिरधर खोला बेचा के यहाँ गए तो उनसे लौकी मांग ली, किसी ने दूध दे दी, ये सबको लेते हुए, सबसे मिलते हुए बड़े आराम के साथ में, आनंद के साथ में शाम को घर लौटे। मैया को कहा, जी मैया ये दूध है और ये लौकी है, आज दूध की लकलकी बनेगी। आप लोग जानती हैं कि नहीं जानती हैं दूध की जैसे जैसे पानी में चावल सिद्ध किया जाता है, वो दूध में ही लौकी सिद्ध होती है, उसमें बड़े सुंदर मसाले होते हैं और बहुत सुगंधित और बहुत टेस्टफुल होता है। मैया ने बनाया, ठाकुर जी को भोग लगा, और भोग लगाने के बाद में निमाई पंडित जी को दिया मैया ने, उन्होंने खूब प्रेम के साथ में खाया। खाने के बाद में जब शाम हो गई, आज बहुत दिनों तक अपनी पत्नी से बोले नहीं थे, विष्णु प्रिया जी से बहुत दिन हो गए, क्योंकि जब ही होश में रहते तो हरे कृष्ण कहते हुए पछाड़ खा करके गिर जाते, होश नहीं रहता, सब समय भगवान नाम किया करते थे, आज बड़े तंदुरुस्त हैं। अपनी पत्नी के घर में गए और अपने हाथों से उसको श्रृंगार किया और अपने हाथ से उसके मुख में पान की बीड़ी दी, अब बड़े प्रेम से उसके ठोड़ी पकड़ करके बड़े प्रेम से आज बातचीत करने लगे। वो तो थोड़ी सी घबरा गई, आज बहुत दिन हो गए हमसे कोई बात नहीं की, सब समय कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे, कभी रोते थे, कभी पागल हो जाते, आज तक हमसे बात नहीं हुई, और आज ऐसा कर रहे हैं क्यों? आज मैं सवेरे गंगा स्नान करने गई, रास्ते में हुचट लग गई, हुचट समझते हैं, ठोकर लग गई और हमारे नख कुछ से ऊपर होकर के रक्त निकलने लग गया। आज क्या बात हो गई या ऐसा हो गया? और गंगा में स्नान करते समय, विवाह का समय का, हमारी नाक में जो लवंग कहते हैं या क्या बेसर, वो बेसर उसी में गुम हो गया है, लौंग, तो उसको बेसर कहते हैं शुद्ध भाषा में,
तो
तो वो बेसर ही थी, तुम बेसर को समझ लो, तो विवाह काल की बेसर थी, वो बेसर गंगा जी में गिर पड़ी, खोजते खोजते हार गई, नहीं मिला, माथा ठुकराया। आज हमारे विवाह का समय का ये बेसर भी चला गया, न जाने आज कौन सी विपत्ति आएगी। घर आकर के रोने लगी, मैया ने समझा क्यों रोती है, तो उन्होंने सारी कहानी दी, कुछ सांत्वना दी, ऐसा होता है कोई बात नहीं। और शाम को आज पति उनका श्रृंगार करके बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद में उसने सोचा ये प्रदीप होता है तो प्रदीप तो वो जब बुझने को होता है तो झप झप और फिर बुझ जाता है। देखा है कभी, जब दीप बुझने को होता है तब ऐसा होता है। तो आज हमारे न जाने इस में क्या लिखा है, आज हमारा काम, आज हमारा क्या होगा, सोच रही थी। और इतने में प्रभु की जोग माया उन पर ऐसा किया, ये आंखों पर हजार हजार मन के पत्थर चढ़ गए और जग नहीं सकी। वो जगाना चाहते हैं किंतु जग नहीं रही, बहुत चेष्टा की। ठीक आधी रात के समय के पहले जब सो गई, उनके तरफ में एक बार देखा और बस घर से निकल गए, एक धोती और एक चादर बस। सामने गए, दरवाजे पर मैया खड़ी थी, मैया जानती थी कुछ कुछ, मैया आज लकड़ी हो गई है सूख कर, आंखों में आंसू भी नहीं है, चेतनता भी नहीं है, खड़ी की खड़ी रह गई। और निमाई पंडित ने अपनी मैया का चार बार परिक्रमा करके प्रणाम करके और धूल लेकर के सिर पर वहाँ से निकल गई। मैया बोल नहीं सकी, कितना दुख होगा आप लोग समझ लेंगे। और जाकर के पास ही में गंगा थी, माह का महीना जे नहीं है, जाड़े का मौसम, सब लोग थर थर कांप रहे और उसी में गंगा नदी में हरी बोल करते हुए डूब गए और कूद करके और दूसरे पार में चले गए कंटक नगरी, और वहीं पर उन्होंने संन्यास लिया। और संन्यास लेकर के फिर कहाँ गए, जगन्नाथपुरी में चले गए मैया का आदेश लेकर के, और वहाँ पर किस प्रकार से रह करके सारे भारतवर्ष में नाम का प्रचार किया और इन गोपीनाथ जी के प्रेम का प्रचार किया। किस रूप में? नाम संकीर्तन के माध्यम से किया। पहले नाम तो था जुग धर्म नाम, किंतु उसके द्वारा ब्रज का प्रेम नहीं मिलता था, उसमें प्रेम नहीं था। स्वयं कृष्ण ने महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के इस नाम के माध्यम से, कौन सा नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यदि कोई दीक्षित होकर के सद्गुरु से और अपराध को छोड़कर, अनर्थों को छोड़कर, संबंध ज्ञान के साथ में कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, इस प्रकार से नियमित रूप में कोई हरि नाम करे, बहुत सहज ही में उसके पाप ताप धुल जाएंगे, उसके अनर्थ दूर हो जाएंगे, अपराध दूर हो जाएगा और तब सहज ही वो ब्रज प्रेम को पाएगा। गौर प्रेमानंदे। आज हमारा यहाँ